नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, अटल पेंशन योजना को मिला अवधि विस्तार, 2031 तक रहेगी जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले में 538 करोड़ रुपए की 59 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, पारदर्शिता, निगरानी और नागरिक सहभागिता लोकतंत्र का मजबूत आधार है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में बंद पड़ी सभी चीनी मिलें चालू की जाएंगी, रोजगार के लिए किसी को प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2031 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,66,00,000 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। एक रिपोर्ट।
आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। ये लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता राशि भी स्वीकृत की है। इससे 25,74,000 से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़े लाभार्थियों को फायदा मिलने की आशा है। अंकित और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
इधर राज्य सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने की स्थिति में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान जारी रखने का फैसला किया है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी कारण जीवन प्रमाणीकरण नहीं जमा कर पाने की स्थिति में भी लाभार्थियों का पेंशन बंद नहीं किया जाएगा।
जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है या सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग उसको और सरल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि महीने में एक दिन जिनको आप डीबीटी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो उनके वजह से उनको हम लोग वंचित नहीं करें। मासिक रूप से एक दिन हम लोग उनको ब्लॉक के अंदर में या पंचायत कहीं भी उनको वहां बुला करके रजिस्टर मेंटेन ही हो, चाहे जैसे भी लोग, उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर हाल में पेंशन की राशि उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे।
विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेसी ने कहा कि बुजुर्गों को राहत के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाया जाएगा।
लाइफ सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लास्ट लाइफ सर्टिफिकेशन जो हुआ था 2021 में हुआ था, तो उसके बाद नहीं हुआ है। तो हमारे जो अभी एसएससी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेशन, जिसमें आधार का है और आईरिस दोनों का है, और जो लोग सीएससी सेंटर आ सकते हैं पहले उनको कर दिया गया है। अभी तक 70,00,000 बेनिफिशियरीज का हो चुका है उनका वेरिफिकेशन, और जो नहीं है, जो सक्षम नहीं आने के लिए, उनके लिए फिर हम लोग गाँव में और पंचायत में जाके कैंप्स लगाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले को 538 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। श्री कुमार ने जिले की 24 विकास योजनाओं का उद्घाटन और 45 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की एनडीए सरकार हर एक क्षेत्र में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2,00,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,087 गाँव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 323 पंचायतों में जो भी है सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री कुमार ने यात्रा के दौरान छपरा में जीविका सिलाई केंद्र, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई तथा अन्य विकास स्थलों का निरीक्षण भी किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान छपरा में सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी सभी चीनी मिलें फिर से खोली जाएंगी। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार के युवाओं को अपनी जगह पर ही काम मिले, इसके लिए देश की सबसे बेहतरीन औद्योगिक नीति लागू की गई है।
उद्योग लगाने के लिए हम एक रुपया पर जमीन देने का काम, हम जीसीसी ला रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम किसान के लिए बिहार की सरकार और भारत के सरकार के सहयोग से बिहार में जितने भी बंद पड़े चीनी मिल है सबको शुरू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। साथियों, जो मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं, हम आपको स्वस्थ करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में वैसे सभी लोगों को बिहार के अंदर रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि पारदर्शिता, निगरानी और नागरिक सहभागिता लोकतंत्र का मजबूत आधार है। श्री कुमार आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विधायिका की का उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका से ही लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। इस दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारियों, विभिन्न प्रदेशों के पार्टी अध्यक्ष और अन्य सांगठनिक जिम्मेदारों के साथ पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्री नवीन कल औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद सरकार और संगठन के बीच समन्वय के प्रयासों के तहत लगातार बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पटना स्थित सभागार में कौशल विकास पर मंथन कार्यक्रम के तहत बिल्ड द स्किल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध स्टार्टअप मेंटर और एंजल के प्रतिनिधियों समेत उद्योग जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलखन खंडेलवाल ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में स्टार्टअप की अहम भूमिका होगी। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध स्टार्टअप मेंटर और एंजल इन्वेस्टर हरिबाल सुहश्रुम ने कहा कि वर्ष 2026 तक भारत में स्टार्टअप की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के माध्यम से देश में अब तक 21 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 4,53,00,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें जमा राशि 3,33,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह योजना जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस छोटी बचत योजना के अंतर्गत 8.2% की ब्याज दर रखी गई है। योजना में बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना लाखों बालिकाओं के लिए आशा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया है।
प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं।
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि घुसपैठिए हमारी सामाजिक और आर्थिक विकास की राह में बड़ी बाधा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि गलत तरीके से आए हुए लोग देश के संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। उन्होंने कहा कि इनके कारण देशवासियों के बीच संसाधनों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देश के संसाधन पे पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग, अनाधिकृत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पे हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधन की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के वरीय नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन समेत प्रदेश कांग्रेस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पार्टी के सभी नव निर्वाचित विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में राज्य का पहला शिव कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसे लेकर जमीन आवंटन का मामला सुलझ गया है। जिला प्रशासन ने उज्जैन और वाराणसी की तर्ज पर रेलवे की चिन्हित जमीन पर ही कॉरिडोर निर्माण का निर्णय किया है। इसके बदले रेलवे को गंगा किनारे बरारी, जगदीशपुर और सुल्तानगंज में तीन अलग अलग भूखंड दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को निःशुल्क भूमि स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा है। विभाग की मंजूरी के बाद जमीन की बदलाइन का कार्य किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर मौसम में परिवर्तन हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं उत्तर बिहार के जिलों में नमी बढ़ने से कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार नरपतगंज प्रखंड के राजस्व कर्मचारी इम्तियाज आलम को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगरानी की टीम ने कल उसे 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बक्सर जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 319A पर रोहिणी भान के पास 2 मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना पुलिस ने जिले के 10 कुख्यात अपराधियों पर 25,000 रूपये का इनाम घोषित किया है। पटना प्रक्षेत्र के IG जितेंद्र राणा ने आज उन 10 अपराधियों की सूची जारी की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, अटल पेंशन योजना को मिला अवधि विस्तार, 2031 तक रहेगी जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले में 538 करोड़ रुपए की 59 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, पारदर्शिता, निगरानी और नागरिक सहभागिता लोकतंत्र का मजबूत आधार है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में बंद पड़ी सभी चीनी मिलें चालू की जाएंगी, रोजगार के लिए किसी को प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।